इसमें कोई संदेह नहीं। कौन कह सकता है कि उनके जीवन में चिंता नहीं, दुख नहीं। तो हम देखते हैं कि कलयुग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति का मन चिंतित रहता है, और यदि लोगों से पूछा जाए कि उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है तो कहेंगे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बहुत अधिक दुख। तो इस वजह से कई बार लोग आत्महत्या करने का भी प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि दुख इतने बढ़ जाते हैं कि उनको लगता है मृत्यु ही ज्यादा अच्छी है। आम बात है, विशेषकर बड़े बड़े शहरों में आत्महत्याएं तो बहुत ही आम बात है। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है कि एक दूसरे प्रकार के लोग और दुखी और संतुष्ट रहते हैं, वो ये जो आत्महत्या करने का प्रयास करके विफल हो जाते हैं, वो और दुखी रहते हैं। जैसे एक बार कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन कोर्ट में एक केस आया, और वो केस ऐसा था, वो कह रहे थे जज को कि मैंने आत्महत्या करने का प्रयास किया और उसके लिए मैंने विष पिया, लेकिन जहर में भी मिलावट थी इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद मैंने सोचा अपने आप को ऊपर से लटका लूं, 100% नायलॉन रोप लेके आया, लेकिन जैसे ही लगा के लटका रस्सी टूट गई। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर रेल की पटरी पर लेटूंगा, तो रेल की पटरी पर जाके वो महानुभाव लेट गए, लेकिन उस दिन रेल रोको आंदोलन हो गया और 2 घंटे तक रेल नहीं आई, बेचारे बोर होके उठ के चले गए। और उन्होंने बाकी सभी लोगों को कहा कि देखो कलयुग में प्रत्येक वस्तु में इतना मिलावट है कि आत्महत्या करना भी बड़ा कठिन है। तो इससे लोग और परेशान रहते हैं और अनेकानेक साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास जाते हैं, अपना दिल खोलते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन में सबसे अधिक आत्महत्याएं साइकेट्रिस्ट की है, ये लोग नहीं जानते। तो यहां पर ध्रुव महाराज बड़े दुखी और चिंतित अवस्था में अपने मां के पास आते हैं, तो उनकी मां उनको सबसे उत्तम उपाय बताती हैं। वो कहती हैं, तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम, आप जाओ किसी डॉक्टर के पास नहीं, भृत्यवत्सलम के पास जाओ। भृत्यवत्सलम अर्थात कौन? वो जो अपने सेवकों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तमेव वत्साश्रय, केवल ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय लो जो अपने सेवकों के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। मुमुक्षु भी मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को सनातन काल से अनेक ऋषि मुनि ढूंढते रहे हैं। मुमुक्षु भी, जो मुक्ति की कामना करते हैं वो प्रायः इस भगवान कृष्ण के सुंदर चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने का ही प्रयास करते हैं। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आप आराधना कैसे करो? अपने नित्य कर्म करते हुए उनका स्मरण करो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हर अवस्था में की जा सकती है, और इसीलिए मैं आपको ये राय देती हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण का ही एकमेव आश्रय ग्रहण कीजिए। देखिए मेरे प्रिय पुत्र, आप बड़े दुखी हैं और रो रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो माँ हूँ और आपके दुख को सुन सकती हूँ। कोई पुत्र रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ माँ मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अधिक से अधिक मैं तुम्हारे साथ रो सकती हूँ और तुम्हें सांत्वना दे सकती हूँ, कुछ मीठे शब्द कह सकती हूँ, लेकिन हृदय के अंदर दुख के मूल कारण को क्या मैं हटा सकती हूँ? नहीं। तो क्यों न तुम ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो हजारों लाखों करोड़ों मां के प्रेम को आप पर न्योछावर कर सके। मैं तो एक मां हूं, लेकिन आप कृष्ण के पास जाओगे तो भगवान कृष्ण के हृदय में करोड़ों करोड़ों माताओं के हृदय का प्रेम है। इसीलिए केवल कृष्ण का आश्रय लो। इस तरह सुनीति ने अपने प्रिय पुत्र ध्रुव को ये आदेश दिया और कहा कि देखो, इसका प्रमाण क्या है? तुम्हारे पितामह अर्थात पितामह के पिता ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी वो 14 लोकों का निर्माण किसकी शक्ति से कर पाते हैं? केवल कृष्ण भगवान की कृपा से वो कर पाते हैं। और तुम्हारे स्वयं के पितामह स्वयंभू मनु, उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उनको शक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त हुई है। तो इसीलिए हमारे परिवार में जितने भी लोग सफल रहे हैं उन्हें राज्य करने की शक्ति केवल भगवान से ही प्राप्त हुई है। इसलिए आप और किसी के पास मत जाओ, दर दर मत भटको, केवल भगवान कृष्ण का आश्रय लो। और इस तरह सुनीति ने एक आदर्श माँ का उदाहरण प्रस्तुत किया और ध्रुव को कहा कि सीधे वन में जाओ, क्योंकि अनेक ऋषि मुनि सनातन काल से जंगल और वन में ही भगवान श्री कृष्ण को खोजते रहे हैं। इसीलिए आप वन में जाओ और कृष्ण भगवान को प्राप्त करो। तो देखिए, सुनीति एक आदर्श माँ का रूप धारण की हुई है। माँ को अपने पुत्र से इतना लगाव होता है, लेकिन यहाँ सुनीति अपने पुत्र का असली भला चाहते हुए कह रही है, तुम जाओ और अपने हृदय की इच्छा पूरी करो, क्योंकि भगवान कृष्ण ही तुम्हारे हृदय की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये सुनकर ध्रुव महाराज जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं और वन में भगवान को ढूंढते रहते हैं। तभी वहां पर श्रील नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि कौन है? नारद मुनि भगवान के एक शुद्ध प्रतिनिधि हैं। जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करना चाहता है तो वो अपने शुद्ध प्रतिनिधि को उसके पास भेज देते हैं। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को देखकर चकरा गए। 5 साल का बच्चा, वो भी जंगल में वन में अकेले, किसी बात की उसने चिंता नहीं की। भगवान गीता में कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयोर व्यवसायिनाम। यदि आपको कृष्ण भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो आपको अपने जीवन में व्यवसायात्मिका बुद्धि, आपकी बुद्धि एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होनी चाहिए, तब आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। 5 साल के बच्चे के हृदय में देखिए इतनी तीव्र इच्छा थी। भले ही वो भौतिक इच्छा क्यों न हो, लेकिन इतनी तीव्र इच्छा कि अकेले बिना कुछ सोचे समझे वन में चले गए। वन में जाना कितना कठिन काम है, वन में कितने खतरनाक भालू, चीते, शेर, सर्प इत्यादि प्राणी घूमते हैं। वन में कोई सुविधा नहीं होती। ध्रुव महाराज ने जो कि जीवन में अपने 5 साल केवल अपने महल में बिताए थे, पहली बार इस तरह वन में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा। बस उनके हृदय में एक ही लक्ष्य था कि अपने पिता से और पितामह से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूं। ये थी उनके हृदय की तीव्र इच्छा। नारद मुनि देखकर चौंक गए कि किसी व्यक्ति के हृदय में इतनी अधिक तीव्र इच्छा कैसे हो सकती है। तो नारद मुनि विस्मय करने लगे, कि ये क्षत्रियों के अंदर क्रोध की भावना और मान सम्मान और अपमान की भावना कितनी भीषण होती है कि तनिक मात्र भी उस पर चोट पहुंचे तो देखिए क्या क्या कर बैठते हैं। और नारद मुनि सीधे ध्रुव महाराज के समक्ष आए और ध्रुव महाराज को कहने लगे कि अरे देखो बच्चे, तुम यहां कहां आए हो? ये महल नहीं, ये जंगल है, और जंगल में अनेक प्रकार के दुर्घटनाएं होने की संभावना है। सबसे पहले जानो कि तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो तुम छोटे बच्चे हो या तो तुम बहुत बड़े विद्वान हो, या तो बड़े हो या छोटे हो। यदि छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चे को सम्मान और अपमान की भावना होती है क्या? छोटे बच्चे को तो कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है। बच्चे को आप कहो ए बच्चे तुम मूर्ख हो तो बच्चे को कुछ फर्क पड़ता है? बच्चा हंसता है, बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। छोटे बच्चे के कान को भी थोड़ा ऐसे कर दो, बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर सम्मान और अपमान की भावना नहीं होती। तो वो कहने लगे यदि तुम बच्चे हो तो अपमान की भावना क्यों हृदय में रखते हो, और यदि आप बड़े हो और जानते हो कि धर्म के सिद्धांत क्या हैं, तो आपको पता होगा कि जो भी हमारे जीवन में अनुभव होता है वो सब हमारे पिछले जीवन की वजह से होता है, पिछले कर्मों की वजह से हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना अकर्मणो गति। पिछले कर्मों के प्रभाव इतने शक्तिशाली होते हैं कि इस जीवन में भी उसका असर पड़ता है। तो यदि आप वास्तव में विद्वान हो तो पिछले कर्मों की वजह से हुए इस जन्म की घटनाओं को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हो? तो बच्चे हो तो अपमान के बारे में कुछ नहीं जानोगे, और बड़े हो तो अपमान जानोगे कि वास्तव में पिछले जीवन का असर है। प्रभुपाद को एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी, मैं कितनी भक्तों की अच्छी सेवा कर रहा हूं, हर प्रकार से नियमों का पालन कर रहा हूं, फिर भी कई बार लोग आकर मुझे गालियां ही देते रहते हैं, मेरी सेवाओं में दोष ही निकालते हैं, ऐसा क्यों? मैंने क्या गलती की है? प्रभुपाद जी ने कहा देखो, पिछले जीवन में तुम नालायक थे फिर भी लोग आपकी स्तुति कर रहे थे, आपने कुछ भला नहीं किया फिर भी आपको बहुत मान सम्मान मिल गया, इसीलिए उसको बराबर करने के लिए इस जीवन में भगवान ऐसी घटनाएं आपके जीवन में लाएंगे कि आपका कोई दोष न हो फिर भी लोग आपको अपमानित करेंगे, लेकिन इसके पीछे भगवान की कोई गूढ़ योजना अवश्य होगी। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि यही संदेश दे रहे थे। और उसके बाद नारद मुनि कहने लगे कि देखो बेटा, तुम तो अभी बच्चे हो, अभी तेरी उम्र क्या हुई है? तुम्हारे समान भूतकाल में बड़े बड़े ऋषि आए थे, सब कुछ छोड़कर आए थे, महल और नौकरी और घर बार और पत्नी और बच्चे, ये सब छोड़ के पहले भी कई लोग आध्यात्मिक मार्ग में भगवान को प्राप्त करने जंगल में आए थे, तुम कोई पहले व्यक्ति नहीं हो। लेकिन पता है उनके साथ क्या हुआ? आए लेकिन थोड़े समय तक जोश था, तब तक चलता रहा, एक बार उत्साह निकल गया, सब वापस चले गए, धीरे धीरे एक एक करके सबका इस मार्ग से पतन हो गया। तो तुम ये मत सोचो कि इस मार्ग में आगे बढ़ना इतना आसान है, अभी भी सोच लो। मैं तो कहता हूँ अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, घर जाओ, महल में जाओ, खिलौने वगैरह पड़े हैं, मित्रों के साथ खेलो, और उसके बाद खेल कूद कर राजा बनो, और जब वानप्रस्थ का समय आएगा उसके बाद आप प्रेम से यहाँ जंगल में आ जाना। नहीं तो ये मत सोचो ये मार्ग बहुत आसान है, हाँ अभी अभी हृदय में बड़ी चोटें पहुंची हैं, तो हृदय में भावना उठ रही है कि भौतिक जगत सब दुखों का सागर है वगैरह, लेकिन धीरे 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 पता लगेगा कि आध्यात्मिक मार्ग कैसा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग मैराथन रेस की तरह है। मैराथन रेस में स्टेडियम में आरंभ में 50 लोग एक साथ आरंभ होते हैं। रेस की शुरुआत होती है, आप लोगों ने देखा होगा, बंदूक बजती है तो 50 लोग पूरे जोश के साथ आरंभ होते हैं और सबके हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि हम गोल्ड मेडल लेंगे, और सब बड़े उत्साह के साथ स्टेडियम के बाहर जाते हैं और पूरे जंगल में, वनों में, कंट्री साइड वगैरह में घूमते 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 40 किलोमीटर घूमते हैं, भागते हैं। लेकिन जैसे जैसे रेस आगे बढ़ता जाता है, 50 लोग एक साथ आगे निकले आरंभ में, लेकिन रेस जब आगे बढ़ता है तो धीरे 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 करके कुछ कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और मैराथन में बीच में आपको पानी पिलाया जाता है, या आपके सर पर पानी दिया जाता है, या आपको कुछ विश्राम करने की सुविधा रहती है, तो कई धावक तो बीच में ही रुक जाते हैं, कहते हैं ये पानी पीकर यहीं बैठ जाओ ज्यादा अच्छा है, कौन भागता रहेगा। वैसे भी हम पीछे ही हैं, पीछे हैं, गोल्ड मेडल तो मिलना नहीं है, 3 ही मेडल हैं अभी, अपना तो 5वां 6ठा नंबर के पीछे आ गया, अब कौन भागे, वहीं बैठ जाते हैं। और दूसरे जो भागते भी हैं, निर्धारित दिशा में भागते भागते अचानक जंगल के दूसरे रास्ते के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, सोचते हैं ये जंगल में घूम के आते हैं जरा, और वहां चले जाते हैं। लेकिन उपयुक्त रास्ते में भागते भागते पूरे उत्साह के साथ अंत तक कितने लोग बचते हैं? बहुत कम। और जब अंत तक सारे धावक स्टेडियम के अंदर आते हैं, निकले तो 50 लोग एक साथ निकले थे, लेकिन अंदर आया तो एक आदमी पहले आया और सब उठकर तालियां बजाते हैं। लेकिन उसको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरा आदमी 1 किलोमीटर पीछे है, फिर वो दूसरा आदमी आता है, फिर तीसरा आदमी। तो मैराथन के रेस में आरंभ में बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन अंत में रेस बहुत कम लोग पूरी करते हैं, जीतने की बार तो और। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहते हैं, देखो बेटा बड़े जोश के साथ निकले हो, 5 साल की तेरी उम्र है, घर पे जाकर खेलो कूदो, उसके बाद जब उम्र हो जाए तब आ जाना। तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को कहा, नारद मुनि ने फिर अंततः ध्रुव महाराज को कहा कि देखो, यदि आपकी हृदय में कोई इच्छा हो तो उस इच्छा को पूरी कर लो और उसके बाद जंगल में आओ, क्योंकि किसी के प्रति क्रोध करने से क्या लाभ। तो ध्रुव महाराज ने कहा, देखिए नारद मुनि जी, आपने जो बात की है वो बहुत सही है, प्रामाणिक है, लेकिन मेरे हृदय में भौतिक इच्छाओं के अंगारे फूट रहे हैं, मेरे हृदय में ये तीव्र इच्छा है कि मैं अपने पितामह से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करूं, और वो इच्छा इतनी तीव्र हो चुकी है कि अब वापस लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप जो फिलॉसफी मुझे सुना रहे हो, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन क्षमा करें, हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहता हूं कि यह फिलॉसफी उन लोगों के लिए सही है जो सत्व गुण में स्थित हैं। मेरे हृदय में रजोगुण का भयंकर प्रभाव है, और ऐसी अवस्था में आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, कृपा करके मुझे क्षमा करें यदि मैं आपके प्रति अपराध कर रहा हूं तो। लेकिन क्या है, स्पष्ट बात करनी चाहिए, मैं आपके साथ टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करूंगा, स्पष्ट बात कहूंगा, मैं आपके इस आदेश का पालन नहीं कर सकता कि सबके प्रति समान भाव रखो इत्यादि, मुझे अपनी इच्छा की पूर्ति चाहिए, अब आप स्पष्ट रूप से बताओ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने सुना है कि आप भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि हैं, और मैंने सुना है कि भगवान के भक्त भगवान जितने शक्तिशाली होते हैं भगवान जितने क्या भगवान से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं, तो आपकी कृपा मुझ पर हो जाए तो मेरे पितामह से भी बड़ा साम्राज्य मुझे मिल सकता है, इसका मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। तो बस मेरी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए, मैं यहां वहां नहीं जा रहा हूं, आपकी शरण में आ रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्विदा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, आर्तो जो बहुत दुखी हो, जिज्ञासु जो बहुत जिज्ञासु हो परम सत्य के विषय में, अर्थार्थी जो धन संपत्ति ऐश्वर्य का भोग करना चाहे, और ज्ञानी जो ज्ञान चाहता हो। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, लेकिन वो भगवान का आश्रय तभी ले सकते हैं जब उनके हृदय में कोई सुकृति हो। बिना सुकृति के कोई व्यक्ति भगवान के पास नहीं आ सकता। देखिए कितने ही लोग दुखी हैं, लेकिन क्या सभी भगवान के पास आते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आर्त दुखी व्यक्ति भगवान के पास जाता है, तो दुनिया में कितने ही दुखी लोग हैं, वो भगवान के पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उसके लिए भी योग्यता चाहिए, योग्यता चाहिए। यदि आपको डॉक्टर के पास जाना हो, तो डॉक्टर की फीस भरने लायक भी क्षमता चाहिए। जब आपके पास जेब में पैसे होंगे, तभी आप हिंदुजा अस्पताल में जा सकते हैं, चाहे कितने भी बीमार क्यों न हो। उसी तरह भले ही आप दुखी हो, जब तक आपके हृदय में उचित सुकृति न हो, तब तक आप भगवान के पास नहीं जा सकते। तो इसीलिए ध्रुव महाराज के हृदय में भौतिक इच्छाएं थीं, लेकिन साथ साथ सुकृति भी थी, और इसीलिए वो भगवान के पास गए। और जब ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से ये इच्छा व्यक्त की, तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से ये कहा कि देखो, आपने स्पष्ट रूप से ये वचन कहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुणादिकम मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधिमात, मैत्रीम समन्तात अन्विच्छे न तापैर अभिभूयते। तो अभी मैं आपके समस्या का समाधान बताऊंगा। और ध्रुव महाराज को नारद मुनि बहुत उचित बात बताने लगे। नारद मुनि ने सबसे पहले कहा कि देखो ध्रुव, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान की भक्ति आरंभ करने से पहले तीन नियमों का पालन करो, और यदि आप इन तीन नियमों का पालन करोगे तो सफलता अति शीघ्र पाओगे। ये तीन नियम क्या हैं? गुणाधिकम मुदम लिप्सेत, यदि अपने से अधिक योग्य अधिक गुण वाले किसी व्यक्ति से मिलो, तो उनसे भेंट करके प्रसन्न हो, हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि अपने से शक्तिशाली, अपने से योग्य और अपने से अधिक गुणों वाला कोई मिले तो, गुणाधिकम मुदम लिप्सेत। और दूसरी बात क्या है? अनुक्रोशम गुणाधमात, और अपने से कम गुण वाला कोई मिले, अपने से कमजोर या शक्तिहीन व्यक्ति मिले, तो उनके ऊपर अपनी कृपा करो, अनुकंपा दिखाओ। और तीसरे, मैत्री समन्तात अनविच्छेन, जो अपने से समान गुण वाला कोई मिले, अपने की बराबरी वाला कोई मिले, तो उससे मैत्री रखो। तो ये बहुत ही मुख्य बात है, क्योंकि भौतिक जगत में अक्सर ऐसा होता है कि अपने से अधिक गुण वाला कोई मिलता है तो उसके प्रति द्वेष की भावना उठती है, अपने से कम गुण वाला कोई दिखता है तो उसका हम प्रायः उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, और हमारे से बराबर का कोई मिले तो उसके सामने आकर अपने गुणों का हम बखान करते हैं, अपना ही गुणगान करने लगते हैं। तो इस तरह नारद मुनि ने कहा कि विशेष रूप से गुणाधिकम मुदम लिप्सेत, हो सकता है आपके पिता के पास इतनी धन इतनी संपत्ति हो, लेकिन हृदय में द्वेष की भावना मत रखो, क्योंकि भौतिक जगत में द्वेष एक ऐसा गुण है जो हमारे अन्य सभी गुणों को नष्ट कर देता है। गुणाधिकम मुदम लिप्सेत, अपने से अधिक योग्य कोई व्यक्ति मिले तो उससे द्वेष मत करो। द्वेष की भावना हृदय में उठेगी, लेकिन उस द्वेष की भावना को नियंत्रित करो और उसकी स्तुति करो, उसको देखकर उसको मिलकर प्रसन्न हो जाओ। तो एक बार एक व्यक्ति के सामने एक देवता आए और देवता ने उससे पूछा कि मांगो, क्या वर मांगते हो? उस व्यक्ति ने कहा, देखिए देवता जी, मेरी बस एक ही इच्छा है कि जब भी मेरे हृदय में कोई इच्छा उत्पन्न हो आप तुरंत उसकी पूर्ति कर दो, क्योंकि बार बार मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। तो देवता ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरी ओर से भी एक शर्त है। वो क्या? कि आपकी प्रत्येक इच्छा मैं पूरी करूंगा, लेकिन आपकी इच्छा पूरी करते करते आपके पड़ोसी की इच्छा मैं दुगनी पूरी करूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, चलो अपनी इच्छा तो पूरी होगी। तो उसने इच्छा की कि मुझे एक सुंदर आलीशान महल चाहिए। देखते ही देखते आलीशान महल मिल गया। महल के बाहर झांक कर देखा कि पड़ोसी के दो बड़े बड़े आलीशान महल थे। उतना सुखी नहीं हुआ, हृदय में इच्छा व्यक्त प्रकट हुई कि ये क्यों हो रहा है, मेहनत मैंने की और फल इसको मिल रहा है। फिर उसने इच्छा की कि मेरे पास धन हो संपत्ति हो। अचानक उन्होंने देखा कि सोने चांदी से उनका घर भर गया है। पड़ोसी के यहां जाकर देखा तो दुगना सोना दुगना चांदी था। इस प्रकार दर दर पर वो जो भी इच्छा प्रकट करता पड़ोसी की इच्छा दुगनी पूरी हो जाती। तो बड़े परेशान थे, बहुत उन्हें क्रोध हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन पड़ोसी मेरा मुझसे आगे बढ़ रहा है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। उसने देवता से कहा, मेरी एक आंख निकाल लो। पड़ोसी की दोनों आंख चली गई। तो उसको कुछ सुकून हुआ, चलो अपने पास कुछ तो है जो उसके पास नहीं। तो भौतिक जगत में लोग बस इस भावना को लेकर अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं, अपनी मानसिक दुनिया बनाकर बैठे रहते हैं, जिसमें अपनी ही ओर से वो अपनी प्रतिष्ठा का एक स्तर रखते हैं और कहते हैं कि हाँ ये मेरा स्तर होना चाहिए, कोई इससे आगे बढ़े तो उससे द्वेष की भावना होती है, लेकिन इससे केवल समय व्यर्थ गंवा देते हैं। तो नारद मुनि ने कहा, गुणाधिकम मुदम लिप्सेत, अपने से अधिक गुण वाला कोई मिले तो उससे द्वेष मत करो, उसकी स्तुति करो और उसे देखकर प्रसन्न हो जाओ। और मैं तुम्हें ये मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस सुंदर मंत्र का आप जाप करो, मधुवन में जाओ और मेरे बताए हुए आदेश के अनुसार भगवान पर ध्यान लगाओ और भगवान अतिशीघ्र आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। इस तरह नारद मुनि के आदेश पर भ्रू महाराज जंगल में गए, वन में गए। वन में बैठकर उन्होंने नारद मुनि के बताए हुए मार्ग पर ध्यान लगाना आरंभ किया। बहुत आवश्यक है कि गुरु जो मार्ग बताएं उस मार्ग के अनुसार हमें चलना चाहिए। कोई पत्नी है, वो प्रत्येक पुरुष के साथ नम्रता के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करेगी, लेकिन वो सेवा केवल अपनी पति की करती है। उसी तरह चाहे कितने भी महापुरुष विश्व में क्यों न हो, हमें अपने हृदय से केवल गुरु के आदेश का तत्पर पालन करना चाहिए। और इसी तरह ध्रुव महाराज ने बड़ी तीव्रता के साथ पहले महीने में हर तीन दिन में वो कपित फल खाते जो पेड़ से गिरता, फिर दूसरे महीने में हर छह दिन घास फूस खाते जो नीचे पड़ा हुआ होता, तीसरे महीने में हर 9 दिन में वो कुछ जल पी लेते थे, अर्थात 9 दिन कोई जल नहीं और 9 दिन के बाद थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते थे। सोचिए कितनी तीव्र तपस्या कर रहे थे 5 साल के छोटे बालक। साल में एक बार पांडव निर्जल एकादशी होती है और वो एक दिन में हमारा क्या हाल हो जाता है। एक हफ्ते से मन संतप्त रहता है कि अगले हफ्ते इस दिन ये आने वाला है और एकादशी के दिन भी चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ने लगता है। तो बहुत कठिन है कलयुग में तपस्या करना, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में सबसे आसान मार्ग बताया है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। सब बोलिए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमी।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भवतु मे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ध्रुव महाराज की तपस्या का चौथा महीना जब आरंभ हुआ, तब उन्होंने हर 12 दिन में थोड़ी सी श्वास बस और कुछ नहीं, 12 दिन तक वो श्वास भी नहीं लेते थे, और 12 दिन के बाद थोड़ी हवा वो अपने शरीर में जाने देते, और 5वें महीने पे उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। ये हमारी कल्पना से परे है, लेकिन जब ध्रुव महाराज ने इस तरह भीषण तपस्या की तो उनकी तपस्या के फल स्वरूप 14 लोकों में जो हवा था वो सभी धीरे धीरे उनके प्रति खींचता चला गया, और सारे देवतागण भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए और सारे विष्णु भगवान के पास गए, तो भगवान ने उन्हें सांत्वना दी, कहने लगे ये जो आप देख रहे हो ये मेरे भक्त ध्रुव महाराज की लीला है, मैं उसके हृदय की इच्छा को पूरी करूंगा, आप चिंतित मत हो। तो कहा जाता है कि भक्त की इतनी शक्ति होती है कि 14 लोकों में उसका प्रभाव पड़ सकता है, भले ही वो एक भक्त क्यों न हो, लेकिन मुख्य बात है उस भक्त के हृदय में भक्ति करने की तीव्रता कितनी है। सबसे उत्तम उदाहरण है His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta स्वामी श्रील प्रभुपाद की। एक व्यक्ति, लेकिन उनके हृदय में भक्ति का प्रचार करने की इतनी तीव्र इच्छा कि पूरे विश्व भर में भक्ति का प्रचार, और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इतने सेंटर्स पूरे विश्व के कोने कोने में फैले हुए, और ऐसे ऐसे स्थानों पर लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं जहां उन्होंने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना था। तो ध्रुव महाराज के इस तीव्र तपस्या को देखकर भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए, और भगवान के सौंदर्य को देखकर ध्रुव महाराज पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन शोनायतेनादर बिंब भासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुभ्रवा। भगवान श्री विष्णु के चेहरे पर, उनके मुख पर इतनी सुंदर मुस्कान होती है, मुखेन लोक आरति हर, वो अपने सुंदर मुस्कान से अपने भक्तों के दुखों को हर लेते हैं। मुखेन लोक आरति, भक्त को भक्ति मार्ग में अनेक कठिनाइयां होती हैं, लेकिन भगवान के चेहरे पर, मुख पर सुंदर मुस्कान को देखकर उसके सारे दुख तुरंत दूर हो जाते हैं। परिस्फुरत कुंडल मंडितेन, भगवान श्री विष्णु के कान में सुंदर कुंडल, उनके हाथ में बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण होते हैं। प्रत्यर्हयंतम सुनसेन सुब्रवा प्रदर्शयंतम, और इनमें इतना तेज निकलता है कि इस तेज से भगवान का चेहरा और उनका पूरा शरीर बहुत ही भयंकर रूप से जाज्वल्यमान हो उठता है, और भगवान के इस सौंदर्य को देखकर ध्रुव महाराज पूरी तरह आकर्षित हो गए। वो समझ नहीं पाए कि ये भगवान इतने सुंदर हैं, और इनको छोड़कर पता नहीं मैं क्या क्या मांगने जा रहा था। भगवान के सौंदर्य को देखकर ध्रुव महाराज की बोलती बंद हो गई। भगवान उनके निकट आए और अपने हाथ में शंख लिया, और उस शंख को ध्रुव महाराज के सर पर धीरे से छू दिया। और भगवान के सुंदर शंख के स्पर्श मात्र से ही ध्रुव महाराज के हृदय से इतने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं निकलने लगी कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ऐसी प्रार्थनाएं कर सकता हूँ। ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, 5 साल के छोटे बच्चे थे, उन्होंने संस्कृत व्याकरण वगैरह नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब हृदय में भक्ति की भावना आती है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगयते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीन तारणम, तो कोई भगवान की स्तुति तब कर सकता है जब भगवान और उनके प्रतिनिधि की विशेष कृपा होती है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन, जब तक भगवान की शक्ति विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु की और उनके प्रतिनिधियों की और विशेष रूप से गुरुदेव की कृपा जब तक न मिले, कोई भी व्यक्ति भगवान की स्तुति नहीं कर सकता। और इसीलिए ध्रुव महाराज के ऊपर जब भगवान की विशेष कृपा हुई, तुरंत वो भगवान की स्तुति करने लगे और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे। भक्ति मुह प्रवहताम नई मे प्रसंगो भूयाद महंतम यतताद महिराशयानाम, भगवान से वो प्रार्थना करने लगे कि अभी तक मैं आपसे कुछ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आया था, लेकिन मुझे अब ये नहीं चाहिए, मुझे पता है क्या चाहिए, भक्ति मुह, ऐसी परिस्थिति चाहिए कि मैं बार बार भक्ति कर सकूं, निरंतर भक्ति कर सकूं। भक्ति मुह प्रवहता मई में प्रसंगो, और मैं भक्ति के लहरों में डूबता रहूं। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है भूयात अनंत महताम अमलाशयानाम, जब आपके सुंदर भक्तों का मुझे संग मिलेगा तब ये संभव है। जब तक आप मुझे अपने भक्तों का संग नहीं देंगे हे भगवान, तब तक मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ? तो इसीलिए मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे अपने पिता से भी अधिक बड़ा साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे भक्तों का संग चाहिए। भक्तों का संग क्यों चाहिए? भक्तों का संग इसलिए चाहिए क्योंकि ये नोल्बसाम, भक्तों के संग में हृदय के अंदर जो भौतिक इच्छाएं आग के समान जल रही हैं, वो एक ही क्षण में समाप्त हो सकती हैं। नेश्ये भवत पैतनामत पान मत, और आपके भक्तों के संग में बैठकर मैं हरि कथा सुनूं और हरि कथा सुनते सुनते मैं पूरी तरह उन्मत्त हो जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए। तो ध्रुव महाराज जैसे महान भक्त ने इतने भीषण तपस्याएं करने के पश्चात अंततः भगवान से क्या इच्छा व्यक्त की कि आपके भक्तों के संग में बैठकर मैं हरि कथा का श्रवण कर सकूं, और वो भी पूरी तीव्रता के साथ, जिससे मैं उसमें इतना लीन हो जाऊं, इतना ध्यान पूर्वक श्रवण करूं कि मैं उन्मत्त हो जाऊं, पागल हो जाऊं। तो इस तरह परीक्षित महाराज भी प्रार्थना करते हैं, पुनश्च भूयात् भगवति अनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सुयाम्याम् उपयामि सृष्टिम् मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः, कि हे ऋषि मुनि, यदि मैं भगवत धाम न जा सकूं तो मुझे बस एक ही इच्छा चाहिए, एक ही इच्छा की पूर्ति चाहिए, वो ये कि मैं निरंतर भगवान के भक्तों के संग में प्रेम से बैठकर हरि कथा का श्रवण कर सकूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, ये सब विश्व विजयी राजा हैं जिनके पास यथाशक्ति धन और संपत्ति और ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन भक्ति की परिपूर्णता पर भगवान श्री विष्णु उनके सामने आए हैं, और भगवान श्री विष्णु लक्ष्मीपति हैं, चाहे जितनी भी लक्ष्मी प्रदान कर सकते थे लेकिन ध्रुव महाराज के हृदय में इच्छा क्या है? भक्तों के संग में बैठकर श्रीमद् भागवत का श्रवण कर सकूं, जिससे मैं धीरे 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 उन्मत्त हो जाऊं। तो उसके बाद श्री विष्णु ने कहा कि देखिए, आपने मुझसे वर मांगा है तो वो वर देके ही रहूंगा। तो मैं तुमको ध्रुव तारा, एक ऐसा विशेष तारा है जो भौतिक जगत के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, उस ध्रुव तारे पर आपको मैं स्थान दूंगा, जिससे आप वहां पर 36,000 साल तक जवान रहते हुए अपनी सशक्त इंद्रियों के साथ आनंद कर सको, और उसके पश्चात उस तारे में आनंद करते करते वापस भगवत धाम जा सको। तो ध्रुव महाराज कहना चाहते थे कि मुझे ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा, क्योंकि तुमने इस तरह इच्छा की है, मैं तुम्हारी भौतिक इच्छा भी पूरी करूंगा और साथ साथ आध्यात्मिक इच्छाओं की भी पूर्ति करूंगा। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि यदि हम भगवान के निकट आते हैं तो न केवल हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति पूर्ण रूप से हो पाती है। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे थे ये देखने के लिए कि ध्रुव महाराज के अंदर भगवान को प्राप्त करने की कितनी तीव्र इच्छा है। तो ये गुरु का अधिकार है कि किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले उसकी परीक्षा ले, लेकिन ध्रुव महाराज नारद मुनि के इस परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण।